नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुजा कुमारी SNSRKS कॉलेज में इतिहास विभाग में कार्यरत हूँ। पिछले अध्याय में हम लोग मौर्य समाज में वर्णों की स्थिति पढ़े थे। उसका अगला पार्ट हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें स्त्रियों की क्या स्थिति थी? मौर्यकालीन भारतीय समाज में स्त्रियों को सम्मानित स्थान प्राप्त था। यद्यपि ऋग्वैदिक काल की तुलना में स्त्रियों की स्वतंत्रता में कमी अवश्य आई थी। उन्हें घर की चार दीवारी में ही काम करना पड़ता था। बौद्ध भिक्षुणियों को छोड़कर अन्य कोई स्त्रियां स्वच्छंद रूप से बाहर में नहीं घूम फिर सकती थी, किंतु विधवा विवाह को मान्यता प्राप्त थी। अपनी पहली पत्नी से संतान न होने की स्थिति में कोई दूसरी शादी कर सकता था। किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी को उत्पीड़ित किए जाने पर उन्हें राज्य की ओर से दंडित किए जाने का प्रावधान था। उन दिनों नारी शिक्षा का भी उल्लेख मिलता है। कुछ स्त्रियों ने नृत्य, संगीत तथा चित्रलेखन आदि ललित कलाओं में दक्षता प्राप्त होने का भी उल्लेख मिलता है। स्त्रियां सैन्य शिक्षा प्राप्त कर सेना में भी भर्ती हो सकती थी। मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य की महिला अंगरक्षिकाओं का उल्लेख किया है। साथ ही उन्होंने स्त्रियों को सेना में शामिल होने की संभावना भी व्यक्त की है। स्त्रियां राजनीति एवं प्रशासन में भी भाग ले सकती थी। कौटिल्य ने मणिकाक्षन का वर्णन किया है, जबकि अशोक के अभिलेख में स्त्री अध्यक्ष महापात्र का उल्लेख मिलता है। उन दिनों देश में वैश्यावृत्ति भी थी, जिसे सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता था। विवाह प्रथा। मौर्य युगीन भारत समाज में विवाह शास्त्रों के नियमानुसार होते थे। यद्यपि इन नियमों के अपवाद स्वरूप भी कुछ विवाह होते थे। शास्त्रानुसार निम्नलिखित 8 प्रकार के वैवाहिक संस्कार थे। वाह्य। इस प्रथा में पिता द्वारा अपनी कन्या को अलंकृत एवं सुसज्जित कर वर को सौंपा जाता था। प्रजापत्य। इस प्रथा का उल्लेख संतानोत्पत्ति की भावना से प्रेरित था, जिसके अनुसार धर्म, अर्थ और काम में कन्या और वर का अधिकार समान होता था। आर्य। इस प्रथा में कन्या का पिता वर पक्ष से एक जोड़ा गौओं को लेकर उस गायों को पुनः वर को दान देता था। देव। इस प्रथा में देवताओं की शोभा शुश्रूषा में लगे युवक को पिता अपनी कन्या का दान करता था। आसुर। इस प्रथा के अनुसार कन्या का पिता वर पक्ष से द्रव्य लेकर अपनी कन्या का दान करता था। गंधर्व। प्रेमातुर। वर एवं कन्या का बिना अपने माता पिता की आज्ञा के प्रणय सूत्र में बंधना। राक्षस। यह एक वैवाहिक प्रथा थी, जिसके अंतर्गत वर पक्ष कन्या से बलात् शादी कर लेता था। पैचास। यह अत्यंत ही घृणित प्रथा थी, जिसके अंतर्गत वर सोई कन्या को जबरदस्ती उपभोग करता था या कन्या को मादक पदार्थ पिलाकर अतेचा अचेतना अवस्था में उससे शादी रचा ली जाती थी। उपयुक्त 8 प्रकार के विवाहों में प्रथम 4 प्रशस्त और अंतिम 4 अप्रशस्त माने जाते थे, किंतु कानून की दृष्टि से ये सभी स्वीकार थे। विवाह प्राय एक वर्ण और जाति में होते थे, किंतु सवर्ण और अंतर जातीय विवाह भी संभव थे। कुछ जातियों में संगोत्र विवाह की प्रथा भी प्रचलित थी। समाज में दहेज प्रथा भी प्रचलित थी, किंतु दहेज वर एवं कन्या दोनों ही पक्षों को देने पड़ते थे। प्राय सर्वसाधारण में एक विवाह करने की प्रथा थी, परंतु बहुविवाह निषिद्ध नहीं था, जबकि राजा और सरदारों में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी। जन सामान्य। पुरुषों के लिए शादी से 8 वर्ष तक उसकी पत्नी द्वारा संतान न पैदा होने की स्थिति में या केवल लड़कियां उत्पन्न होने की स्थिति में दूसरा विवाह कर सकता था। यदि स्त्री को लगातार मृत संतान पैदा होती हो तो वैसी स्थिति में पुरुषों को दूसरी शादी के लिए 20 वर्षों तक प्रतीक्षा करना अपेक्षित था। दूसरी ओर स्त्रियों को भी पुनर्विवाह के पूर्व कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था। विधवा होने की स्थिति में यदि वह अपने ससुर या प्रतिपक्षी संबंधियों की राय से दूसरी शादी करती है तो उसे पति के धन का अधिकार मिलता था, अन्यथा नहीं। पुनः यदि किसी स्त्री का पति विदेश जाने से पूर्व अपनी पत्नी के भरण पोषण की अपने पूर्व जितने समय की व्यवस्था कर जाता था तो उस स्त्री को दिए गए समय के दुगुने अवधि तक दूसरी शादी करने के लिए प्रतीक्षा करना पड़ता था। जबकि विद्या अध्ययन के लिए विदेश गए हुए पति की संतान रहित स्त्री को 10 वर्षों तक प्रतीक्षा करने का विधान था। दास प्रथा। प्राचीन विश्व के अन्य सभ्यताओं की भांति भारत में भी दास प्रथा विद्यमान थी। मौर्य काल में भी भारत में इस प्रथा के प्रमाण मिलते हैं, किंतु यूनानी लेखक इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते। एरिवन ने भारत में एक ही दास नहीं होने की बात कही है। मेगस्थनीज एवं स्ट्रोवो जैसे अन्य यूनानी लेखक भी एरियन के इस मत की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि सभी भारतीय स्वतंत्र हैं एवं वे दास रहना पसंद नहीं करते, परंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं अशोक के अभिलेखों से दास प्रथा के अस्तित्व को का प्रमाण मिलता है। ग्रीक लेखकों के मत भी भ्रमपूर्वक प्रतीत होते हैं। स्मृतियां भी दास प्रथा का उल्लेख करती हैं। अशोक महान ने अपने अभिलेखों में दासों तथा मजदूरों में विभेद करते हुए कहा है कि राजा की दृष्टि में उसकी समस्त प्रजा, चाहे वह दास हो या राज कर्मचारी, एक समान है। ऐसा प्रतीत होता है कि यूनानी लेखकों को भारत के किसी क्षेत्र विशेष में दास प्रथा बिल्कुल न दिखाई पड़ी हो, साथ ही उसके भारत में दास प्रथा के अस्तित्व में न होने का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह भी हो सकता है कि यहाँ पर उसके देश यूनान के ठीक विपरीत दासों के साथ सद्व्यवहार किया जाता था। कौटिल्य ने दास प्रथा की कानूनी वैधता को स्वीकार किया है। दासों की खरीद बिक्री होने का संकेत भी मिलता है। बौद्ध ग्रंथ एवं अर्थशास्त्र का यह सिद्ध करते हैं कि भारत में दास प्रथा एक संस्था के रूप में विद्यमान थी और दास संपत्ति का एक रूप थे। भोजन। मौर्यकालीन भारतीयों का सामान्य भोजन अन्य फल और मांस थे। अनाज में चावल की सर्वाधिक प्रधानता थी। मद्यपान भी बड़े पैमाने पर होते थे। मांस उनके भोजन का मुख्य अवयव था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि मांस और मदिरा की दुकान का राजकीय नियंत्रण था। अशोक के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के पूर्व राजप्रसाद में हजारों पशु काटे जाते थे। धनी और निर्धनों के भोजन में बड़ा अंतर था। वस्त्र। यद्यपि मौर्यकालीन भारतीय मितव्ययी थे, किंतु उनके भड़कीले वस्त्र पहनने का शौक था। वे बारीकी और सुंदरता के प्रेमी होते थे। निर्धन लोग सूती वस्त्र ही धारण करते थे, किंतु धनी लोग रत्न जड़ित वस्त्रों का प्रयोग करते थे। आमोद प्रमोद। मौर्ययुगीन भारतीय मनोविनोद प्रेमी भी थे। मनुष्य और पशुओं के मल्ल युद्ध जनसाधारण के मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। साथ ही इस युग में शतरंज का खेल तथा युद्ध क्रीड़ा का प्रचलन हो गया था। राजे महाराजे भूपतियों के बीच अशोक के अभिलेखों से बिहार यात्रा का उल्लेख मिलता है, जिसका प्रमुख अंग शिकार होता था। मल्ल युद्ध में मध्ययुग के युद्ध के हिंसात्मक होने के कारण अशोक ने इन्हें बंद करा दिया था। लोग तमाशे देखना काफी पसंद करते थे। तमाशे करने वाले नट नर्तक गायक मदारी आदि अपनी कला का प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। गांव के शालाओं में कई तरह के खेलकूद आयोजित किए जाते थे। लोग नृत्य एवं संगीत में भी रुचि रखते थे। इस काल के प्रमुख वाद्य यंत्र में ढोल झांझ आदि थे। स्त्रियों में गेंद का खेल बड़ा प्रिय था। ब्रह्मा पशुपति शिव सरस्वती के सम्मान में समाज का आय सम्मान समाज में कई आयोजन किए जाते थे। अशोक ने समाज को निषिद्ध कर दिया। नैतिक स्तर, मेगस्थनीस ने लिखा है कि उच्च कोटि की सरलता भारतीयों के चरित्र एवं व्यक्तित्व की अद्भुत विशेषता थी। वे मितव्ययी, मितभाषी, सत्यवादी जैसे उच्च आदर्शों के प्रतिमूर्ति थे। चोरी एवं लूट मार का नामो निशान तक न था। अतएव लोग अपनी संपत्ति को बहुधा अरक्षित अवस्था में ही छोड़कर घर से निकल पड़ते थे। उन्हें न्यायालय की शरण भी यदा कदा ही लेनी पड़ती थी। निष्कर्षतः लोगों का नैतिक स्तर उच्च था। अशोक के धर्म प्रचार से उनके नैतिक गुणों में और अभिवृद्धि हुई। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था का निरूपण करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि वैदिक काल की अपेक्षा इस युग में सामाजिक संगठन अधिक सुदृढ़ हो चला था। लोगों का जीवन स्तर काफी उच्च कोटि का हो चला था और लोग सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करते थे।